मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 16 फरवरी 2016 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में आप सभी का मैं हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और इसी क्रम में दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने उन 11 नौजवान साथियों का भी, जिन्होंने एकेडमी की अभी सितंबर अक्टूबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं मोहम्मद अजहर अंसारी, आप दिल्ली से हैं। श्रेया शुक्ला, आप बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हैं। उदित सिंह, सीतापुर उत्तर प्रदेश से हैं। धनंजय त्रिपाठी, आप भी लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। श्रेयांक मिश्रा, आप भी सीतापुर उत्तर प्रदेश से हैं। पवन शर्मा, बलिया उत्तर प्रदेश से हैं। चंद्रभान पाल, इलाहाबाद डेफिनेटली उत्तर प्रदेश से हैं। ओम प्रकाश पटेल, पन्ना मध्य प्रदेश से। आशीष कुमार, डालमिया नगर बिहार से। चंदन पासवान, जोधपुर राजस्थान से। और नीरज कुमार पाल, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। तो मोहम्मद अजहर, श्रेया, उदित, धनंजय, श्रेयांक, पवन, चंद्रभान, ओम प्रकाश, आशीष, चंदन और नीरज, आप सभी 11 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आपने अभी नाम सुने और यह एक अद्भुत संयोग ही कह लीजिए कि इन 11 स्टूडेंट में आप देखिए कि लगभग 7 स्टूडेंट उत्तर प्रदेश से हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स ज्यादा इसके प्रति अपनी रुचि दिखा रहे हैं। यह एक अच्छा, मैं तो साइन मानता हूं मित्रों, क्योंकि जिस स्टेट में या जहां के स्टूडेंट्स में चीजों के प्रति जितनी अधिक जिज्ञासा होगी, जितनी अधिक रुचि होगी, डेफिनेटली उसका प्रभाव सभी पर पड़ता है। और वैसे तो इस एकेडमी का यह सौभाग्य रहा है कि पूरे स्टेट से स्टूडेंट्स का रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन आज कुछ ऐसा कुछ संयोग ही रहा है कि मुझे सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स को वेलकम करने का मौका मिला। तो आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत है। फ्रेंड्स, अब बहुत कम दिन रह गए हैं जबकि फरवरी का हम लोगों का बैच शुरू होने जा रहा है। और सच पूछिए तो अब यह ना सोच करके कि कितने दिन बचे हैं, अब तो उल्टी गिनती शुरू कर देनी चाहिए। 12 दिन के बाद हम सब आमने सामने होंगे, पूरे देश से आए हुए स्टूडेंट्स मौजूद रहेंगे और फिर मिलकर यह बातचीत करेंगे, देखेंगे कि सिविल सर्विस की तैयारी का कौन सा सबसे आसान और पक्का रास्ता हो सकता है। मित्रों, जैसा कि मैं लगातार बार बार याद दिलाता रहता हूं कि एकेडमी की जो ये क्लासेस हैं, बेसिकली आर्ट ऑफ प्रिपरेशन की क्लासेस हैं, या कह लीजिए कि एक फाउंडेशन क्लास है कि हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए। और मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि जो फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के स्टूडेंट जो यहां से गए थे और इसके बाद उसी पैटर्न पर जब तैयारी करने लगे, तो धीरे धीरे अब वे अपने ईमेल के जरिए सूचित कर रहे हैं कि उन्हें कहां कहां और कैसी कैसी सफलताएं मिली हैं। तो मित्रों, आज मैं एक ऐसे ही ईमेल की चर्चा आप के सामने करने जा रहा हूं। यह मेल मुझे मिला है जगमोहन चौधरी के पास से। इंग्लिश में मेल है, मैं हिंदी में अनुवाद करके, अनुवाद तो नहीं कहूंगा, हिंदी में जो इसका सेंस है वह आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। और इससे इस लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से में पेश करने के पीछे मेरा एक बहुत ही सोचा समझा मकसद है। मकसद सिर्फ ये है मित्रों कि जब हम अपने जीवन में सफलताओं के बारे में सोचते हैं, तो हम ज्यादातर केवल अपने को मेहनत तक सीमित कर देते हैं, दूसरी चीजें हमसे छूट जाती हैं। और मुझे लगता है कि जो दूसरी चीजें छूटती हैं वो किसी भी मायने में मेहनत से कम अहमियत नहीं रखती, बल्कि सच पूछे तो मुझे तो कभी कभी यह भी लगता है कि यदि वे दूसरी चीजें छूट जाती हैं तो फिर हमारी अपनी मेहनत ही कोई मायने नहीं रखती। यह समझना मुझे लगता है कि हर एक के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो, चाहे वो नौकरी कर रहा हो, चाहे वो खेती बाड़ी ही क्यों न कर रहा हो। जीवन के कुछ बहुत मूलभूत सिद्धांत होते हैं। तो मुझे जगमोहन के इस मेल में चूंकि उन सिद्धांतों की थोड़ी सी झलक मिली, हालांकि उन्होंने अपना ये मेल एकेडमी के संदर्भ में लिखा है, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसे टीचर के बारे में कही जा सकती हैं जो आपको सही रास्ता दिखाने का काम कर रहा है, चाहे फिर वो आपके अपने पेरेंट्स ही क्यों न हो। सवाल दिशा का होता है, सवाल सही तरीके से चलने के अंदाज का होता है, सवाल सिर्फ चलते रहने का नहीं होता। तो मैं ये मेल आप लोगों को पढ़कर सुना रहा हूं। ये जो जगमोहन चौधरी हैं, हमारे सेकेंड बैच के स्टूडेंट रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि सर मुझे आपको यह सूचित करते हुए बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मेरा जो सिलेक्शन है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के में असिस्टेंट कमांडर के पद पर हो चुका है। अभी ही जो यूपीएससी ने मेरिट लिस्ट निकाली है उसमें मुझे ऑल इंडिया में 106 रैंक मिली और इसकी सफलता के लिए मैं एकेडमी के प्रति बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं। सर इससे पहले मैं 2 अटेम्प्ट दे चुका था लेकिन मैंने उनमें यहां तक कि रिटेन भी क्वालिफाई नहीं कर सका था। मैंने पिछले साल सेकेंड बैच का आपके यहां अटेंड किया और इसके बाद मैंने अपने दिमाग में जो पढ़ने के तरीके की क्लैरिटी हासिल की और साथ ही किस तरीके से हमें अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी चाहिए यह भी मैं जान सका और यहां तक कि मैं आपसे स्टेज पर पर्सनालिटी के बारे में अलग से मिला भी था और इंटरव्यू के बारे में मैंने आपसे पूछा भी था। सर एएफई ने जो स्पेशल ऑडियो गाइडेंस के अंतर्गत नेट न्यूट्रलिटी पर जो स्पेशल ऑडियो गाइडेंस प्रोवाइड किया, यहां तक कि डेली ऑडियो गाइडेंस में रोल ऑफ गवर्नर के बारे में, चाइना पाक रिलेशनशिप के बारे में और भारत की सुरक्षा का इसके चैलेंज से संबंध के बारे में, सरदार पटेल के भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में जो बातें बताई गई थीं वे इंटरव्यू में पूछी गई और मुझे इनके उत्तर देने में बहुत आसानी हुई। सर ये एकेडमी कैपेसिटी बिल्डिंग के अतिरिक्त जो दूसरी चीजों को महत्व दे रही है वो कम महत्वपूर्ण नहीं है, जिसमें एसे राइटिंग और ऑब्जेक्टिव टाइप के आंसर भी शामिल हैं। मेरा इंटरव्यू 11 जनवरी 2016 को हेमचंद्र गुप्ता सर के बोर्ड में था और सर मैं किस तरीके से आपका आभार व्यक्त करूं कि इस पूरी की पूरी यात्रा में और मुझे इस फाइनल मंजिल तक पहुंचाने में एकेडमी ने कितना बड़ा रोल निभाया है उसे बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं कि यदि इसे दूसरे लोग भी सुन रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो एकेडमी के गाइडेंस के प्रति अपने को पूरी तरह से डिवोट करें। थैंक्स अ लॉट सर फॉर योर काइंडनेस एंड डिवोशन टुवर्ड्स अस। मित्रों नो डाउट कि ये एकेडमी के बारे में उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा ये कहीं न कहीं एक प्रकार से जीवन के लाइफ मैनेजमेंट की तरफ भी इशारा कर रही है। मित्रों जो मैं ऐसा नहीं कहता कि दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए भी, लेकिन सिविल सर्विसेज के लिए, खासकर आईएएस के एग्जामिनेशन के लिए, या कह लीजिए कि कोई भी आप अपेक्षाकृत बड़ा काम कर रहे हो, अपेक्षाकृत बड़ा काम, एक तो देखिए रूटीन की चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए कि एक बिजनेस है तो सामान्य किस्म की दुकानदारी हो रही है, दुकान हमने खोल ली है और उसमें हम अपना बिजनेस कर रहे हैं और काम भी चल रहा है, ये एक सामान्य सी बात हुई। लेकिन यदि आप उस बिजनेस को एक बड़े बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप छोटे मोटे एग्जाम देते रहते हैं, बहुत से कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होते हैं, वो सामान्य स्तर के एग्जामिनेशन होते हैं, लेकिन यदि आप एक बड़े स्तर का एग्जाम देना चाह रहे हैं तो जब भी हम थोड़ी सी बड़े स्तर के काम से अपने को जोड़ते हैं तो मित्रों वहां फिर काम करने का तरीका ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बजाय कि हम लगातार मेहनत करते रहें। मेहनत से ही यदि बात बनती तो मुझे उदाहरण बहुत से आते हैं मित्रों, मैंने देखा है कि किस तरीके से लोग मेहनत करते हैं, सच में उनकी मेहनत को प्रणाम करने का मन करता है, लेकिन बाद में मन दुख और अफसोस से भर भी उठता है जब ये देखते हैं कि इनको अपनी मेहनत का उस तरीके से प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों सच पूछिए तो हमारे यहां जो कहा गया है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए, इसके तुलना नहीं है। ईश्वर और गुरु से इसे तुलना के रूप में मत लीजिए, मैं इसे तुलना के रूप में नहीं मानता, मैं इसे इस रूप में लेता हूं कि वास्तव में जीवन में गुरु का कितना अधिक महत्व है। और यहां भी जो जिसमें गुरु की बात कर रहा हूं, जिन गुरु की बात कर रहा हूं, वो गुरु नहीं है जो केवल क्लास में ही पढ़ाते हैं, हर वह गुरु है जो हमारे जीवन को शेप देता है। और इसकी शुरुआत हमारे माता पिता से लेकर के और पता नहीं कहां तक फिर वो फैलता चला जाता है और लगातार जीवन में हमें गुरु मिलते ही चले जाते हैं। आप अभी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, इसकी तैयारी कर सकें, इसको बनाने में पता नहीं कितने गुरुओं का योगदान रहा है। और जब आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तब आपको अच्छा प्रशासक बनाने में फिर पता नहीं कितने गुरुओं का योगदान रहेगा। इसीलिए गुरुओं का कभी, या कह लीजिए कि इनकी जो श्रृंखला है वो कहीं जाकर समाप्त नहीं होती। मित्रों अभी एक नई फिल्म आई थी, मतलब मुश्किल से मुझे लगता है कि 3 सप्ताह ही हुए होंगे और हम लोगों ने वो फिल्म देखी भी थी, द चाक एंड डस्टर, चाक और डस्टर पर फिल्म थी जिसके बहुत अच्छे अच्छे उसमें एक्ट्रेसेस थे, शबाना जी थी उसमें। वो फिल्म आप लोगों को हो सके तो देखिए। उस फिल्म में यही दिखाया गया है कि जो प्राइमरी लेवल, मिडिल लेवल और हायर सेकेंडरी लेवल के टीचर्स हैं, स्टोरी जिस तरह से आगे बढ़ती है और बाद में जब एक सिचुएशन क्रिएट होती है तो उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में उनके दुनिया भर में फैले स्टूडेंट्स से पूछा जाता है और किस तरीके से वो अपने टीचर्स के प्रति ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं। तो बेसिकली जब हम कुछ कर रहे होते हैं सच पूछिए तो हमें उस समय उनकी वैल्यू का उतना अंदाजा नहीं होता क्योंकि चीजें हो रही होती हैं। लेकिन मित्रों जैसे ही हम सब थोड़े से बड़े होते हैं, चीजों को पहचानने लगते हैं, सोचने समझने की अपने अंदर ताकत आती है, तब हमें पता लगता है कि अरे बाप रे, जो नींव के पत्थर हैं वो सच में कितने मूल्यवान हैं। और अगर नींव में वो पत्थर नहीं होते तो ये जो इतनी बुलंद जो इमारत दिखाई दे रही है ये बन ही नहीं पाती, और अगर बन भी जाती तो ठहर तो नहीं ही पाती। इसलिए मित्रों सच पूछिए तो पढ़ाने का उतना बड़ा महत्व नहीं है जितना दिशा ज्ञान कराने का महत्व होता है। चलना आप जानते हैं, हो सकता है कि सही तरीके से चलना न जानते हो, वहां से लेकर के और फिर आपका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको चलना है, किस स्पीड से चलना है, किस प्लान के तहत चलना है, कैसे चलना है, रास्ते में जो रुकावटें आएंगी उन रुकावटों से कैसे कैसे जूझना है, जब आप ये सारी तैयारी करके जब आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो यात्रा शुरू करने के बाद और जारी रहते रहते मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल नहीं रह जाता। मित्रों जो एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाले जो पर्वतारोही होते हैं उनसे कभी पूछिए, वो सारे इंतजाम पहले से ही करके चढ़ना शुरू करते हैं कि अगर बर्फ बहुत गिरने लगी तब क्या करेंगे, अगर हिमस्खलन हो गया तब क्या करेंगे, सारी चीजों की तैयारी करके चलते हैं और सारे अवरोधों का इंतजाम पहले से कर लेते हैं। मित्रों मुझे लगता है कि जो यात्राएं लंबी हैं, जो यात्राएं थोड़ी खतरे से भी भरी हुई हैं, उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम न केवल पूरी मानसिक सुदृढ़ता के साथ बल्कि साजो सामान की जो तैयारी होनी चाहिए उनको अपने साथ लेकर चले ताकि उस समय हमारा मनोबल टूटे नहीं, हम उस समय अपने आप को बचा लें ताकि कुछ समय के बाद हम फिर से अपनी यात्रा शुरू कर सकें। तो जगमोहन आपको इस सफलता के लिए कि आपने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट के तहत नौकरी हासिल कर ली है और ऑल इंडिया में आपका 106th रैंक रहा है, इसके लिए मैं अपने सभी प्रिय श्रोताओं की तरफ से, आपके बैच के सेकेंड बैच के जितने भी स्टूडेंट रहे हैं उन सभी की तरफ से अपनी एकेडमी की पूरी टीम की तरफ से, मैडम की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत और बहुत बधाइयां देता हूं, और साथ ही भविष्य के बेहतर सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आपने मेल भी लिखा है कि जो मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है वो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इसमें वह आपको सफलता दिलाए, और फिर से आप इसी तरह का एक खूबसूरत मेल लिख करके हमें इसके लिए सूचित करें। तो एक बार आपको फिर से बहुत बहुत बधाइयां और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। न्यूज आप लोगों ने सुनी ही होगी, जो पहली खबर थी वो आपको मालूम है कि 23 तारीख से हमारे पार्लियामेंट का बजट सेशन शुरू होने जा रहा है, और इस बजट सेशन को लेकर के थोड़े से हंगामे की गुंजाइश, आशंका दिखाई दे रही है। वैसे हर संसद में आप जानते ही हैं कि चूंकि वो बहस का केंद्र है, हमारा एक ऐसा राष्ट्रीय मंच है जहां पर बहस होती है, लेकिन यदि वो बहस बहुत सार्थक तरीके की और सकारात्मक होती है तो निश्चित रूप से उससे राष्ट्रीय विकास को गति मिलती है, और यदि वो बहस अवरोध का रूप ले लेती है तब निश्चित रूप से फिर वो एक लोकतंत्र के ऊपर फिर प्रश्न खड़ा किया जाने लगता है। पिछला जो पार्लियामेंट का सेशन हुआ था मित्रों, आपको मालूम है कि उसको लेकर के जब सेशन खत्म हो गया तो काफी आर्टिकल्स भी आए और एडिटोरियल कमेंट्स भी आए कि किस तरीके से संसद ने अपने दायित्व नहीं निभाए। स्पेशली आपको ध्यान होगा कि जब हम संसद की बात कर रहे थे, दायित्व के बारे में जब लिखा गया तो उसमें राज्यसभा सबसे प्रोमिनेंट पोजीशन पर था, लोकसभा में फिर भी काम काफी कुछ हुआ था लेकिन राज्यसभा का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा था, और आप जानते हैं इसका कारण क्या है। लोकसभा जनता के द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधियों की संस्था है, इसीलिए सबसे अधिक जो पावर्स हैं अगर उस रूप में लें तो लोकसभा के पास हैं, लेकिन जहां तक कोई भी विधेयक पारित कराने का सवाल है वो तब तक पारित नहीं हो सकता जब तक कि वो राज्यसभा से भी पारित न हो। अगर हम धन विधेयक को छोड़ दें तो, वित्त विधेयक धन विधेयक होता है, इसको छोड़ दें तो स्वाभाविक रूप से अगर जहां तक विधेयक को पारित करने का सवाल है तो राज्यसभा भी उतना ही वजन रखती है जितना कि लोकसभा, और राज्यसभा में अभी जो सरकार है उनका बहुमत नहीं है, और यह अभी की जो सरकार है उसको एक बहुत बड़ी बाधा का सामना करना पड़ रहा है, और इसीलिए अभी तक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस जो बिल हैं, खासकर जो लेबर रिफॉर्म से रिलेटेड जो बिल हैं जिसको देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, वो पारित नहीं हो पा रहे हैं। तो थोड़ी सी इसकी सूचना न्यूज में थी, देखते हैं कि आगे क्या होता है। और वैसे भी ये एक डेमोक्रेसी का की थ्योरी ही है, डेमोक्रेसी का मतलब मूलभूत सिद्धांत है कि वहां जो विपक्ष है वो कोई विरोधी नहीं है, विपक्ष का मतलब है कि एक सेकेंड थॉट प्रोवाइड करने वाला ग्रुप। सरकार ये सोच रही है, सरकार भी जनता के हित में सोच रही है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो पूरी तरह से जनता के हित में ही हो। तो जो विपक्ष होता है वो अपना एक सेकेंड थॉट प्रोवाइड करता है, या कह लीजिए कि उस पर एक ऐसी लगाम रखता है जहां पर चीजें बहुत सही तरीके से अपने मैक्सिमम आइडियल सिचुएशन में आ सके। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी के द्वारा सभी पार्टी के सदस्यों, सभी पार्टी के नेताओं को बुला करके और उनसे विचार विमर्श किया जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक बहुत ही कह लीजिए कि इस तरह के कदम लगातार लोकतांत्रिक पद्धति के अंतर्गत उठाए जाते रहे हैं। दोस्तों, जो सबसे बड़ी खबर अगर हम मान करके चलें, जो AIR में जो बहुत थोड़ी सी इशारा के रूप में ही जो खबर आई थी वो खासकर JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अभी जो घटना घटी है उसको लेकर है। आपको मालूम है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में किस तरीके से एक घटना घटी जिसमें कुछ लोग अफजल गुरु, जिन्होंने पार्लियामेंट पर, जिनको मतलब माना गया था पार्लियामेंट अटैक करने को लेकर के, और एक दो और भी उसके कल्प्रिट थे जिनको फांसी की सजा भी दे दी गई थी, उन सबको लेकर के एक कुछ उनके फेवर में नारे लगाए गए, इस तरह की घटनाएं हुई। मैं उस घटनाओं पर नहीं जा रहा हूं, मैं तो केवल सिविल सर्विस के लिए क्या अब महत्वपूर्ण उसमें दिखाई दे रहा है मैं इसकी थोड़ी सी आपसे चर्चा करना चाहूंगा। तो आप देख रहे हैं कि इस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के मामले को लेकर के जो राजनीतिक दल हैं और यहां तक कि जो बुद्धिजीवी हैं वो बिल्कुल आपको साफ साफ दो भागों में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं, और जनरली ऐसा ज्यादातर इवेंट्स के साथ होता भी है। एक वर्ग यह है जो सत्ता के साथ है, जैसे कि आपको मालूम है कि वहां कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया और जिसमें वहां के स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष भी हैं, उनको अभी वो पुलिस हिरासत में है, उनको उनकी गतिविधियों को, कुछ लोगों की गतिविधियों को देशद्रोही गतिविधियां माना गया, क्योंकि एक तरीके से वो कहीं ना कहीं एक प्रो पाकिस्तानी नारा था। ये एक ग्रुप ये है जो सरकार के समर्थन में है। दूसरा ग्रुप ये है जो इसको एक तरीके से दंडात्मक कार्यवाही मान रहा है और लोकतंत्र की जो आत्मा है उसके विरोध में मान रहा है, यानी कि कभी वो इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किए गए आघात के रूप में वो देख रहे हैं, तो कभी बदले की राजनीतिक भावना के रूप में देख रहे हैं, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग बातें कही जा रही हैं। मित्रों, इसके बारे में इससे पहले आप लोगों को कुछ क्लिपिंग्स प्रोवाइड की गई हैं, घटनाओं से रिलेटेड क्लिपिंग्स। आप जानते हैं कि ज्यादातर प्रोवाइड करने का कोई मतलब होता ही नहीं है, क्योंकि मैं मानकर चलता हूं कि जो मुख्य घटनाएं होती हैं वो आप अखबारों में बकायदे पढ़ते ही होंगे, तो घटनाओं से आप वाकिफ हैं। सवाल यह है कि अब सिविल सर्विस के लिहाज से आप इसे किस एंगल से देखेंगे। पहली बात तो यह कि यह घटना इंपॉर्टेंट क्यों है। यह घटना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप भी स्टूडेंट हैं, अभी आप स्टूडेंट हैं, बाद में आप सिविल सर्वेंट बनेंगे, और यह घटना सीधे सीधे स्टूडेंट्स से जुड़ी हुई घटना है। पहली बात, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी घटना है दूसरी बात, और तीसरी बात कि नो डाउट स्टूडेंट एंड पॉलिटिक्स से भी जुड़ी हुई घटना है, और एक बात और भी होती है कि जो हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी स्वतंत्रता से भी जुड़ी हुई घटना है। तो इस तरीके से देखते हैं कि हम यह एक घटना है और इस एक घटना से कई एंगल हमें निकले हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले अगर आप 3 सालों के पेपर को उठा करके देखें जनरल स्टडीज मेंस में, तो हायर एजुकेशन को लेकर के लगभग हर साल कोई न कोई प्रश्न डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में पूछा गया है, चाहे वो फिर आईआईटी और आईआईएम को लेकर के हो या दूसरे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को लेकर हो। और जेएनयू चूंकि हमारे देश का एक बहुत ही प्रतिष्ठित एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, तो स्वाभाविक रूप से उसकी वहां घटी घटना की राष्ट्रीय प्रतिक्रिया होनी ही थी। तो अब अलग अलग एंगल से आपको आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे, एडिटोरियल कमेंट्स भी पढ़ने को मिलेंगे, और आज के नॉलेज सेंटर में भी आपको ऐसी बातें ऐसे बातों से रिलेटेड क्लिपिंग्स मिलेंगी। इसमें मित्रों, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो एडिटोरियल कमेंट लिखा है उसके बारे में मैं थोड़ी सी बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। देखिए, एक बात बहुत साफ है, आपने घटनाएं पढ़ी हैं, आपकी अपनी राजनीतिक विचारधारा भी हो सकती है, होती ही है। अब सवाल यह है कि जब आप सिविल सर्विस में इसके बारे में कुछ भी लिखेंगे तो आपके लिखने का आधार क्या होना चाहिए, इसको जानना फ्रेंड्स मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि उस समय जो हमारे लिए सही मार्गदर्शक हो सकता है, हमारे पास जो इसमें मदद करने वाले जो लाइट हाउस हो सकती है, वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि सिविल सर्वेंट के रूप में हमारे पास जो सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो या कह लीजिए कि अंधेरे में जो रोशनी टिमटिमाती रहती है वो होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उसी की हमें रक्षा करनी है, उसी के अनुसार हमें काम करना है। कॉन्स्टिट्यूशन एक मैं ब्रॉडर वे में कह रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन को बेस करके फिर जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पर, आप उन्हीं को लागू करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके चाहे जो भी निजी विचार क्यों न हो, मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को हमें अपना सबसे अच्छा बेस बनाना चाहिए। और वैसे दुनिया के सभी देश जो सही जो नागरिकता है वो संविधान पर आधारित ही होती है, संविधान ही हमारे लिए सब कुछ होता है। तो मित्रों, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसकी एनालिसिस एक अलग तरीके से पेश की है। जैसे आरोप ये लगाया गया है कि वो जो नारे लगा रहे थे, जो बात कर रहे थे, वो देशद्रोही एंटी नेशनलिस्ट थे, वो देशद्रोही थे, राष्ट्र के विरोध में थे, राष्ट्र विरोधी नारे लगा रहे थे। अब आप देखिए कि इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, या संवैधानिक न कहें तो इसकी आप कह लीजिए कि कानूनी स्थिति क्या है। कानूनी स्थिति के बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2-3 बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। पहली बात तो उन्होंने ये लिखी है कि जो इंडियन पेनल कोड है उसकी जो धारा 124 है उसमें यह बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो नारे लगाए जाते हैं या जो भाषण दिए जाते हैं उन्हें हम राष्ट्र विरोधी तब तक नहीं मान सकते जब तक कि उससे उकसा या कह लीजिए उससे प्रेरित होकर के कोई हिंसात्मक घटना न घटी हो। मतलब वो भाषण या वो नारा यदि किसी हिंसात्मक घटना या गतिविधि का कारण नहीं बनती है तो फिर वह एंटी नेशनल स्लोगन या स्पीच नहीं माना जाएगा। पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, इन्होंने दो प्रश्न उठाए हैं टाइम्स ऑफ इंडिया ने। पहला प्रश्न ये है कि जम्मू कश्मीर ने, वहां की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया था और उस प्रस्ताव में अफजल गुरु के ऊपर जो चार्जेस लगाए गए थे देश राष्ट्रद्रोह के, उसके खिलाफ उन्होंने प्रस्ताव पारित किया, लेकिन सरकार ने जम्मू कश्मीर के विधानसभा के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। और इसी तरह से उन्होंने दूसरी घटना दी है कि सन 2011 में तमिलनाडु की विधानसभा ने उन तीन लोगों को, खासकर जिनको राजीव गांधी जी की हत्या का दोषी पाया गया था और उनको फांसी की सजा दी गई थी, मतलब फांसी की सजा के लिए कोर्ट ने कह दिया था, तो एक प्रस्ताव पारित करके ये मांग की थी कि उन्हें फांसी की सजा न दी जाए, मतलब देश के प्रधानमंत्री की हत्या करने वालों को फांसी की सजा न दी जाए। उसके बारे में भी कोई बात नहीं की गई, मतलब इस प्रस्ताव की निंदा हुई, उस समय आर्टिकल्स वगैरह आए थे, लेकिन इस तरह का कोई लीगल एक्शन या पुलिस एक्शन नहीं लिया गया। इसके बाद उन्होंने एक और उदाहरण में एक घटना का जिक्र किया है कि जो संघ परिवार के जो अनुयायी हैं वो बीच बीच में नाथूराम गोडसे को ग्लोरीफाई करने की कोशिश करते हैं, उसके कृत्यों को ठीक ठहराने की कोशिश करते हैं जो कि महात्मा गांधी के गोडसे हत्यारे रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी इस तरह का कोई चार्जेस नहीं लगाया जाता। तो ये उन्होंने तीन घटनाएं देते हुए और आईपीसी की धारा का उल्लेख करते हुए ये प्रश्न किया है कि फिर जेएनयू में जो कुछ घटना हुई है उसको कैसे एक तरह से राष्ट्र विरोधी या देशद्रोही ठहराया जा सकता है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का व्यू है, देखिए ये एक तरफ का व्यू है। दूसरे व्यूज आपको अलग तरीके से सुनने को मिलेंगे, पढ़ने को भी मिलेंगे। जैसे अमित शाह जी ने कुछ प्रश्न उठाए हैं जो उन्होंने कांग्रेस से सवाल किए हैं, और अगर आप उन्हें सुने तो आपको वहां भी एक ताकत दिखाई देगी, वहां एक अलग तरीके की सच्चाई दिखाई देगी, भले उसमें वो कानूनी ताकत न हो लेकिन एक भावनात्मक या कह लीजिए कि एक व्यावहारिक जो उसका रूप होता है वहां भी आपको कुछ न कुछ मिलेगा। तो स्थिति यह होती है कि जो तैयारी करते हैं स्टूडेंट वो इन सारी चीजों को पढ़ते हैं, इन सारी चीजों को सुनते हैं, देखते हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्हें लगते हैं वे उसे नोट भी करते हैं, और इस नोट करने के बाद फिर वो अपना व्यू पॉइंट तैयार करते हैं। और लेकिन ये मान करके चलिए कि जो आपका व्यू पॉइंट तैयार होना चाहिए वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, एक तो व्यावहारिक हो और दूसरा राष्ट्र हित में हो, तीसरा संविधान सम्मत हो। और इन तीनों चीजों के लिए अगर आपको अपना व्यू पॉइंट सरेंडर भी करना पड़े तो वो किया जाना चाहिए, जहां तक सिविल सर्विस का सवाल है। अदरवाइज आप बिल्कुल अपनी बात अपने ढंग से रखने के लिए स्वतंत्र हैं। तो मित्रों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी, इसके बारे में आज आपको नॉलेज सेंटर पर भी काफी कुछ पढ़ने को मिलेगा। एक जो खबर थी वो हालांकि छोटी खबर थी, जो सूखा प्रभावित 7 राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए, 4,087 करोड़ रुपए देने की बात कही है। तो आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि अभी 2015-16 का जो फाइनेंशियल ईयर गया है इसमें किन 7 राज्यों में एक तरह से सूखे की स्थिति बताई गई है। तो राज्यों के नाम उसमें लिए थे जिसमें सबसे प्रमुख था राजस्थान, जहां सबसे ज्यादा सूखा पड़ा है। इसके बाद दूसरे राज्य थे, राजस्थान के बाद तमिलनाडु था, आंध्र प्रदेश था, झारखंड राज्य था, हिमाचल प्रदेश था, नागालैंड था। तो ये दिमाग में एक थोड़ी सी तस्वीर हो कि इन राज्यों में सूखे की स्थिति थी। मित्रों जो एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर जो मुझे लगती है वो स्वच्छ शहर को लेकर है, और आपने देखा कि उसके ऊपर न्यूज थी कि जो मैसूर है, हम लोग मैसूरी हम लोग के मुंह पे बैठा हुआ है, नाम अब थोड़ा सा उसका अलग हो गया, मैसूरी हो गया है, वो सबसे स्वच्छ शहर माना गया। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब सरकार ने, खासकर स्वच्छता पर सरकार जितना जोर दे रही है, उसको जितना महत्व दे रही है, उसको लेकर के अब शहरों की स्वच्छता पर भी आपस में प्रतिस्पर्धा हो, इसको लेकर के एक कॉम्पिटिशन जैसा तैयार किया गया है। तो एक अच्छी स्थिति है, और सच बात तो यह है कि अगर भारत ने इस स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल कर लिया तो एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की होगी, और न केवल हेल्थ के सेक्टर में ही इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा बल्कि यहां तक कि पर्यटन के क्षेत्र में भी इसका बहुत लाभ होगा, जिसका सीधा फायदा एक तरह से आर्थिक विकास को मिलेगा। तो मित्रों, ये AIR न्यूज की खबरें थी। प्रेस क्लिपिंग्स में आपको स्वच्छ शहर के ऊपर भी क्लिपिंग्स पढ़ने को मिलेंगी, और खासकर अमेरिका ने जो पाकिस्तान को F-16 विमान देने की जो बात कही है, जिसका भारत ने विरोध भी किया है, इसके लिए पहले भी मैंने कुछ क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड किए हैं, उसमें एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप नोट कर लीजिएगा। खासकर भारत का ये मानना है कि ये F-16 विमान एक तरह से आतंकवादी कामों, मतलब उनकी ताकत बढ़ेगी, इसका प्रयोग उपयोग भारत के खिलाफ भी किया जा सकता है, जबकि अमेरिका ये मान करके चल रहा है कि नहीं, इसका खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को दबाने के लिए किया जाएगा। तो अमेरिका का अपना व्यू पॉइंट है, भारत का अपना व्यू पॉइंट है, आपको व्यू पॉइंट मालूम होने चाहिए। तो मित्रों, प्रेस क्लिपिंग्स के बारे में, प्रेस के बारे में इतना ही। अब मैं आता हूं ईमेल पर। तो सबसे पहले मैं अपने दो साथियों के नाम लेता हूं जो अभी फरवरी की क्लास में आ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट उनसे कॉन्टेक्ट करना चाहें उनसे कर सकते हैं। पहला नाम है मुकेश डेरवालिया का, जो राजकोट गुजरात से आ रहे हैं। मुकेश का मोबाइल नंबर है 9723253543। और दूसरे फ्रेंड है राघवेंद्र कुशवाहा, जो इंदौर से आ रहे हैं। राघवेंद्र का नंबर है 8959825058। हाँ, तो दोस्तों, अब मैं उन सभी अपने मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने ईमेल लिखे हैं, और इन्हीं में कुछ साथियों के नाम हैं। अमरदीप भाटी जोधपुर से, शांता कुमारी केवटी बिहार से, तुषार मथुरा से, सिद्धार्थ देहरादून से, चंदन पांडे नवादा बिहार से, राम बोल यादव उत्तर प्रदेश से, OP जाट अजमेर से, हरिओम इंद्रजीत कुमार महतो पश्चिम चंपारण से, तेजेंद्र कुमार, सचिन कुमार अलीगढ़ से, श्वेति सिंह मुंबई से, शुभांगी नामदेव जयपुर से, कुशल कांबले यवतमाल महाराष्ट्र से, पूजा राजपूत प्रतापगढ़ से, किलांजल नारायण, अर्चना उपाध्याय अमेठी उत्तर प्रदेश से, केवल थेकरे अहमदाबाद से, सागर पंसारी रायपुर से, अभिलाष गैरोला देहरादून से, और आलोक पांडे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। तो मित्रों, इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो यहीं समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।